तुलसी की रचनाओं में तत्कालीन राजाओं के प्रति निंदा का भी भाव मिलता है। वे किसी राजा का नाम लेकर विरोध नहीं करते। सामान्यतः सभी भक्त कवियों का और विशेष रूप से तुलसी का जीवन और कृतित्व तत्कालीन सामंती शासन व्यवस्था का विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि तुलसी सामंतवादी व्यवस्था के स्थान पर किसी जनवादी या समाजवादी व्यवस्था की कल्पना करते हैं। 16वीं 17वीं शताब्दी में कोई व्यक्ति कहीं भी समाजवादी व्यवस्था की कल्पना नहीं कर सकता था। तुलसी सामंती व्यवस्था की त्रुटियां ही देख सकते थे। प्रजा के सुखी और राजा के प्रजापालक रूप की ही कल्पना कर सकते थे। उन्होंने राम राज्य के रूप में यही कल्पना की थी। तुलसी ने कलयुग का वर्णन करते समय तत्कालीन व्यवस्था यानी सामंती व्यवस्था की त्रुटियों का उल्लेख किया है। यदि तुलसी आजीवन किसी राजा के दरबार में नहीं गए तो उसका कारण तत्कालीन राजाओं सामंतों के प्रति तुलसी की उपेक्षा और घृणा का भाव ज्ञात होता है। उनके अनुसार तत्कालीन शासकों का सबसे बड़ा दोष यह है कि वे प्रजा को दंडित करके उसकी दुर्दशा करते हैं। वे पाप परायण हैं, धार्मिक नहीं। नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजा नितहिं। दंड की बात दोहावली के दोहे में भी आ गई है। दंड की बात दोहावली के दोहे में भी आई है। वह दोहा और भी कई दृष्टियों से विचारणीय है। गूंड गंवार नृपाल मही जमन महामहिपाल, सामन दामन भेद कली केवल दंड कराल। अर्थात गूंड और गंवार राजा हैं और यवन महामहिपाल हैं। कलयुग में राजनीति साम दाम और भेद पर स्थित न होकर केवल कराल दंड पर स्थित है। वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक तुलसी की दृष्टि से राजा और महामहिपाल क्षत्रिय को होना चाहिए था, गोंड और यवन का को नहीं। कुशासन का कारण राजनीति का केवल कराल दंड पर स्थित होना है। यह यवन सम्राट की और उसकी कराल दंड नीति की निंदा है। जहाँ तक क्षत्रिय राजा के शासन की बात है, उसका शासन केवल इसलिए नहीं अच्छा हो जाता कि गोंड और यवन के स्थान पर क्षत्रिय नृप और महामहिपाल हो जाए। क्षत्रिय राजा की करतूतों के विषय में तुलसी की उक्ति गोंड और यवन शासकों की अपेक्षा ज्यादा स्पष्ट है। क्षत्रि पुनि बैरी पुनि राजा, छल बल कीन चहई निज काजा। पुनि पर ध्यान दीजिए तो क्षत्रि गोंड और यवन से ज्यादा खतरनाक प्रतीत होगा। अतः यह कहना ठीक नहीं है कि तुलसी दरबार में इसलिए नहीं गए क्योंकि उनके समय में मुगल सम्राट का शासन था। तुलसी दरबार में इसलिए नहीं गए क्योंकि वे अपरिग्रही भक्त थे। उस काल में मुगल सम्राट का दरबार एक ही था, लेकिन हिंदू राज दरबार कई थे। तुलसी के कई समकालीन कवि हिंदू राज दरबारों के कवि थे, जिनमें केवल सर्वप्रसिद्ध हैं, जिनमें केशव सर्वप्रसिद्ध हैं। इस्लाम के विरोध में हिंदुत्व की रक्षा की सांप्रदायिक चिंता से वे अधिक ग्रस्त होते तो अकबर से लोहा लेने वाले महाराणा प्रताप के दरबार में चले जाते या उनकी वीरता के गीत गाते। तुलसी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि प्राकृत जनों की स्तुति करना वे सरस्वती को दुखित करना समझते थे। राज दरबारों में न जाने से हमारे भक्त कवियों की भक्ति और उनका स्वाभिमान दोनों सुरक्षित रह गए हैं। कबीर, सूर, तुलसी और सैकड़ों अन्य भक्त कवियों ने तत्कालीन किसी सम्राट या हिंदू मुस्लिम सामंत का आश्रय स्वीकार नहीं किया। तुलसी ने लिखा कि प्राकृत जन का गुणगान करने से सरस्वती अपना सिर धुनने लगती है। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनी गिरा लागी पछताना। कबीर इस विषय में जरा और भी बढ़े चढ़े थे। जिनको कछु न चाहिए वे शाहन के शाह। अष्ट छाप के एक कवि किसी तरह सिकरी पहुंचे भी तो घर लौटकर ग्लानी हुई, पछतावा हुआ तो इस बात का कि आते जाते जूता टूट गया। संतन को कहां सिकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो सरिनाम। संत कवि को सम्राट की कृपा प्राप्त न होने का पछतावा नहीं हुआ, पछतावा हुआ तो पनहिया टूटने का। इससे जाहिर होता है कि हमारे संत कवि तत्कालीन सम्राट समेत सभी हिंदू मुस्लिम शासकों की क्या औकात समझते थे। आज सब कोनों से लूट खसोट करने वाले और साहित्य बेचकर सुविधा जुटाने में रत कई लेखक साहित्यकार भक्त कवियों को संकीर्ण और सामंतवादी व्यवस्था का पोषक मानते हैं। वे यह नहीं देख पाते कि जिस प्रकार छायावाद का साहित्य अंग्रेजी साम्राज्यवाद का विरोध करता है, उसी प्रकार भक्ति साहित्य सामंतवादी व्यवस्था का विरोध कर रहा था। तुलसी के यहाँ तत्कालीन राजाओं का विरोध और भी कई रूपों में मिलता है। कराल कलिकाल में राजा भूमि चोर हो गए हैं, अर्थात वे प्रजा की भूमि हड़प लेते हैं। वेद धर्म दूर गए, भूमि चोर भूप गए भय, वे कृपालु नहीं है, महिपाल न कृपाल चित। कलिकाल ऐसा राजा है जिससे राम को छोड़कर और कोई नहीं बचा सकता। सुनिए, कराल कलिकाल भूमिपाल तुम जाही घालो चाहिए, कहो धौ राखै ताही को। तुलसी ने दोहावली में राजनीति से संबंधित लगभग 20 दोहे लिखे हैं, जिनमें से अधिकांश कर संबंधी हैं। उनके अनुसार जो दशा बवंडर में पड़े हुए पतंग की होती है, चिंताओं में पड़े हुए विवेक की होती है, वही दशा बुरे राज्य में कर्म धर्म सुख संपत्ति की हो जाती है। चढ़े बघुरे चंग ज्ञान ज्यों शोक समाज, कर्म धर्म सुख संपदा त्यों जानिबे कुराज। जैसे खजूर की हजारों शाखाएं जमीन पर कांटे कांटे बिखेर कर खुद भी गिर पड़ती है, उसी प्रकार दुष्ट राजा भी कुचाल और अन्याय करके स्वयं भी नष्ट होते हैं। सामंती व्यवस्था में प्रजा की अधिकांश विपत्तियों का जिम्मेदार राजा होता है। जिस राजा के राज्य में प्रिय प्रजा दुखी है, वह अवश्य ही नरक का अधिकारी है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अब से नरक अधिकारी। महाराओं के प्रति उनकी विरक्ति या घृणा है। ये राज महाराजे उसे शासक पोषक सत्ता के प्रतीक हैं, जो कलयुग के कुराज का संरक्षक है। इस कुराज ने समाज को उबारने की कल्पना तुलसी के साहित्य में मिलती है। इस कुराज से समाज को उबारने की कल्पना तुलसी के साहित्य में मिलती है। रामचरितमानस और उनकी अन्य कृतियों में अनेकानेक स्थलों पर सुराज की कल्पना विविध रूपों में दिखलाई पड़ती है। यह प्रजातंत्र की कल्पना नहीं है, लेकिन सामंतवादी व्यवस्था के यथासंभव त्रुटिहीन रूप की कल्पना है, जिसमें साधारण प्रजा के दुख सुख और उसके सम्मान का पूरा ध्यान रखा गया है। तुलसी का राम राज्य तुलसी के भाववादी मस्तिष्क की कल्पना है, ऐसी कल्पना जो उनके समसामयिक समाज के दुख द्वंद विषमताओं त्रिविध ताप से मुक्त है। वहां इति इति भीति दुखित प्रजा त्रिविध ताप ग्रहों की मार नहीं है, देश सुखी है, वहां सुराज है। राम के राज्य में संपत्ति शोभित है, प्रजा सुराज पाकर सुखी है। इति भित्ति जनु प्रजा दुखारे, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारे। जाय सुराज सुदेश सुखारे, हो ही भरत गति ते ही अनुहारे। राम बास बन संपति भ्राजा, सुखी प्रजा जनु पाई सुराजा। कलयुग और राम राज्य, तुलसी का विषमता ग्रस्त समसामयिक समाज और आदर्श समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। तुलसी का राम राज्य उनके कलयुग के पेट में से निकलता है। जिस तरह कलयुग तुलसी की मुख्य कृतियों में विशेषतः रामचरित में आद्यंत अनेकानेक स्थलों पर विविध रूपों में विद्यमान है, उसी प्रकार राम राज्य भी। कलयुग और राम राज्य तुलसी के कृतित्व के संरचनात्मक घटक हैं, एक दूसरे के विरोधी किंतु साथ साथ सर्वत्र विद्यमान। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, दरिद्रता रोग कुसंग खल इत्यादि दोष कलयुग के हैं, ये सुराज में नहीं होते। याद रखिए, तुलसी का सुराज जनतंत्र नहीं है, वह राम राज्य है। तुलसी यह नहीं सोच सकते थे कि राम राज्य से उसका जो अभीष्ट है वह सामंतवादी व्यवस्था से प्राप्त नहीं हो सकता। उस काल में तुलसी जनतंत्र और समाजवाद का स्वप्न नहीं देख सकते थे, वे ऐसी समग्र शासन व्यवस्था का ही स्वप्न देख सकते थे जिसमें सब सुखी हैं, सब वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं, सभी को न्याय मिलता है, राम का राज्य समस्त पृथ्वी पर है, भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। यह राम राज्य तुलसी के केवल उत्तर कांड में वर्णित नहीं है, वह सुराज के रूप में रामचरितमानस में तथा अन्य कृतियों में अनेकानेक स्थलों पर विद्यमान है। अर्क जवास पात बिनु भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। तुलसी के सुराज में खलों का उद्यम समाप्त हो जाता है, वे वर्षाकालीन अर्क जवास के समान नष्ट हो जाते हैं। सुराज का महात्म्य समझने के लिए उन खलों का स्मरण कीजिए जिनकी वंदना तुलसीदास ने मानस के प्रारंभ में की है। वे ओलों के समान फसल को नष्ट करके ही दम लेते हैं और स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जिम हिम उपल कृषि दल गरहें, लेकिन सुराज की वर्षा फसल को नहीं अर्क जवास को नष्ट करती है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। पंकन रेन सोह असि धरनी, नित निपुण नृप कै जसि करनी। जिति मोह महिपालु दल सहित विवेक भू आलु, करत अकंटक राजपुर सुख संपद सुकालु। अलिगन गावत नाचत मोरा, जन सुराज मंगल चहु ओरा। तुलसीदास के दृष्टि में यह सुराज वही है जहाँ राम है। राम और सुराज एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। राम विवेक भुआलु हैं। राम अपने जीवन चरित्र में दो स्थानों पर विशेष रूप से रमे, चित्रकूट में और अयोध्या में। चित्रकूट में भी राम राज्य था। चित्रकूट को देखते ही भारत को ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे किसी क्षुधित व्यक्ति को अच्छा अन्न मिल जाए। जिस प्रकार इति के भय त्रिविध तापों और ग्रहों से पीड़ित एवं दुखी प्रजा सुंदर देश में सुराज पाकर सुखी होती है, वही दशा भरत की हो गई है। इति, क्षमा कीजिएगा, इति फसल को नष्ट करने वाले छह पदार्थ हैं, अति वर्षण अवर्षण चूहों टिड्डियों चिड़ियों और राजा के आक्रमण का उत्पात। तुलसी की दृष्टि में सुराज का प्रथम लक्षण भूखे को अन्न मिलना और भरपूर फसल है। तुलसी की कविता की लोकप्रियता का एक बहुत बड़ा कारण भारत की प्रकृति और कृषि संबंधी वस्तुओं का रचनात्मक उपयोग है। यहाँ चित्रकूट के सुराज का वर्णन देखना अपेक्षित है। भरत दिख बन सैल समाजु, मुदित छुदित जन पाई सुनाजु। इत भीत जन प्रजा दुखारी, त्रिविध ताप पीड़ित ग्रह मारी। जाय सुराज सुदेश सुखारी, हो ही भरत गति तेहि अनुहारी। राम बास बन संप्रतिभ्राजा, सुखी प्रजा जन पाई सुराजा। सचिव विरागु विवेकु नरेसु, विपिन सुहावन पावन देसु। भट जमनयम शैल राजधानी, शांति सुमति सूची सुंदर रानी। सकल अंग संपन्न सुराव, राम चरण आश्रित चित चाऊ, जीति मोह मही पालु रत्न सहित विवेक भुआलु, करत अकंटक राजपुर सुख संपदा सुकालु। वन प्रदेश मुनि बास घनेरे, जनपुर नगर गावंगन खेरे, विपुल विचित्र बिहग मृगनाना, प्रजा समाज न जाय बखाना, खगहा करिहरि बाघ बराहा, देखि महिष वृष साजु सराहा, बयरु बिहाय चरहि एक संगा, जह तह मनु हुंसेन चतुरंगा, झरना झरहि मत गज गजहि गाजहि, लेट रिपीट, झरना झरहि मत गज गाजहि, मनहु निसान विविध विधि बाजहि, चक चकोर चातक सुकपिक गन, कूजत मंजु मराल मुदित मन। अलिगन गावत नाचत मोरा, जनु सुराज मंगल चहु ओरा, बेल बिटप त्रिन सफल सफूला, सब समाज मुद मंगल मूला। चित्रकूट में सुराज है, वहां सुख संपत्ति है, विवेक नरेश है, विराग सचिव है, यम नियम वीर है, पशु पक्षी मुनि जन सब प्रसन्न है, शासक को विवेकी, मंत्री को मोह रहित और शक्तिशालियों को संयमी होने की कितनी आवश्यकता है, यह हम आज की सामाजिक व्यवस्था में बखूबी अनुभव करते हैं। आज हम तुलसी और उनके देशकाल की सीमाओं को समझते हुए कह सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के शासन यानी राजतंत्र में सुराज संभव नहीं है, फिर भी विवेक विराग यम नियम भी आज आवश्यक हैं। जनतंत्र में भी शासक मंत्री विवेकहीन लोभी और भ्रष्टाचारी होते हैं। जनतंत्र में विवेक आदि के बिना सुराज संभव नहीं है। भूखे को अन्न इति भीति से परित्राण आदि की प्राप्ति की बात ही तो असल बात है। तुलसी के राम राज्य या सुराज का महत्वपूर्ण अंग कृषि या भरपूर फसल है। अपने देश की शस्य श्यामला धरती, यहाँ की प्रकृति, नदी, पर्वत, वृक्षादि से तुलसी को अपार प्रेम था। उनके राम इस लोक में ही रमने वाले हैं। जो कुछ जगत में सुंदर और मंगलकारी है, राम उस सब के पर्याय और पूर्ण योग कहे जा सकते हैं। नित्य पुष्पित और पल्लवित और नवीन होते रहने वाला यह संसार वृक्ष राम का ही रूप है। पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमाम है। स्वर्ग कौन जाएगा, नरक कौन जाएगा, यह सब किसे ज्ञात है। तुलसी अज्ञात को नहीं ज्ञात को प्रेम करते हैं। यह जगत और जीवन तुलसी को बहुत प्रिय है। को जाने को जे है सुरमपुर कौन नरक धन धाम को, तुलसी बहुत भलो लागत जग जीवन राम गुलाम को। अलख को जपने वाले को डांटते हुए तुलसी ने कहा भी था, तुलसी अलख ही का लख है राम नाम जपु नीच। तुलसीदास निराकार ब्रह्म की सत्ता अस्वीकार नहीं करते, किंतु उनके बाहर जामी राम अंतर जामी राम से बड़े हैं। प्रभु पत्थर से, दृश्यमान जगत के अकिंचन जड़ पदार्थ से प्रकट हुए, प्रहलाद के हृदय से नहीं। अंत रजा मी हुंते नहीं, रिपीट, अंत रज रजा मिहुंते बड़े बाहेर जामी है राम जे नाम लिए ते। पैज परें प्रहलाद को प्रगटे प्रभु पाहनते न हिए ते। कहने का तात्पर्य यह कि राम ऐसे राजा हैं जो इस लोक से संबंध है। तुलसी के राम वाल्मीकि के राम की भांति इस लोक का त्याग करके स्वर्गस्थ नहीं होते। रामचरितमानस की राम कथा की समाप्ति राम राज्य और राम के इस लोक में बने रहते होती है। ते ही अवसर मुनि नारद आए करतल बीन। राम और राम राज्य का इस लोक में बने रहना संकेत पूर्ण है। तुलसी के राम इस संसार में ही रत हैं, वे इस संसार को छोड़ नहीं सकते। राम और राम राज्य तुलसी की सनातन कल्पना है, आदर्श है। इस संकेत को समझने पर ही राम राज्य का प्रतीकार्थ खुलता है। राम राज्य तुलसी द्वारा कल्पित ऐसा स्वप्न लोक है जो संपूर्णतः सुखद है। वह हमारे मध्यकाल के सबसे महान लोकवादी कवि द्वारा कल्पित स्वप्न लोक है, जो अपने समय की सीमाओं से युक्त होते हुए भी हमारे लिए संदर्भवान और प्रेरणाप्रद हैं। आज भी राज्य व्यवस्था इतनी त्रुटिहीन नहीं हो गई है कि वह राम राज्य से आगे बढ़ गई हो। तुलसी के राम राज्य का महत्व हमारे युग के श्रेष्ठ भारतीय गांधी ने समझा था, इसलिए उन्होंने अपने युग के आंदोलन का लक्ष्य राम राज्य को बनाया। राम राज्य कोई आध्यात्मिक या अंतःसाधनात्मक उपलब्धि नहीं है, वह ब्रह्मानंद या अमृत सरोवर का रस पीने या परम समाधि की स्थिति नहीं है। वह संसार के दैहिक दैविक भौतिक तापों से मुक्त हो जाने की स्थिति है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हूँ ही नहीं व्यापा। राम के राजा होने पर सभी के शोक दूर हो गए, लोग हर्षित हो गए। शोक के दूर होने और हर्षित होने के कई कारण थे। किसी को किसी से बैर नहीं रह गया और राम के प्रताप से विषमता दूर हो गई। यह विषमता भौतिक दुखों की जड़ है, वह चाहे जिस प्रकार की हो। लोगों को शोक नहीं है, रोग दूर हो गए। किसी की अल्प आयु में मृत्यु नहीं होती, सभी सुंदर हैं, सबके शरीर निरोग हैं। कोई दरिद्र दुखी और दीन नहीं है, कोई मूर्ख और लक्षणहीन नहीं है। अल्प मृत्यु नहीं कवनियु पीरा, सब सुंदर सब विरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुख दीन दुख न दीना, दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। मनुष्य का सुख प्रकृति के व्यवहार पर निर्भर है। राम राज्य में प्रकृति भी सुखद और अनुकूल है। वृक्ष और वन फूलते फलते हैं, हाथी और शेर एक साथ रहते हैं, पशु पक्षी तक आपस में बैर भूलकर प्रीतिपूर्वक रहते हैं। वे नाना प्रकार के मनोहर शब्द करते हैं। शीतल मंद सुगंध वायु बहती है, भ्रमर मकरंद वहन करते हुए विहार कर रहे हैं। लता और वृक्ष मांगते ही मधु वर्षण करते हैं। गायें यथेच्छ दूध देती हैं, दुग्ध देती हैं। धरती अन्न से संपन्न रहती है। त्रेता में भी मानो सतयुग आ गया है। विविध पर्वतों में नाना प्रकार की मणियां प्राप्त होती हैं। सभी नदियों में सुंदर जल प्रवाहित होता है, उनका जल निर्मल और सुस्वादु है। सागर अपनी मर्यादा में है, वह तटों पर स्वयं रत्न डाल जाता है। तालाब कमलों से पूर्ण है, दसों दिशाओं के प्रदेश प्रसन्न है। रामचंद्र के राज्य में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को भर देता है, सूर्य अनुकूल मात्रा में ही तपता है, बादल आवश्यकता अनुसार भी बरसते हैं। निश्चय ही यह एक सुखद स्वप्न लोक है, जिसे तुलसी अपने समय के समाज को दिखाते हैं। स्वप्न स्वप्न ही होता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कवि कितना बड़ा स्वप्न प्रस्तुत करता है, उसका स्वप्न कितने लोगों के सुख दुख से संबंधित है। कवि का स्वप्न समाज का स्वप्न बन सकता है या नहीं? चंद्रमा और सूर्य रावण की इच्छा के भी वश में थे, लेकिन वहां वे केवल रावण की चाकरी करते थे। राम के राज्य में वे राम की ही नहीं, समाज की सबकी सेवा करते हैं। कलयुग में कली बार ही बार दुकाल पड़ता है। राम राज्य में धरती अन्न से संपन्न है, प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के सहयोगी हैं, प्रकृति किसी एक ही व्यक्ति की इच्छाओं के अनुकूल आचरण नहीं करती, सबके सुखों का ध्यान रखती है। फूल ही फर ही सदा तरुकानन, रह ही एक संग गज पंचानन, खग मृग सहज बयरु बिसराय, सबन ही परस्पर प्रीति बढ़ाए। कुज ही खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि अनंदा, शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलि लय चलि मकरंदा, लता बिटप मांगे मधुचवहि, मन भावत धेनु पयस्त्रवहि, शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी, प्रगति गिरिन्न विविध मणिखानी, जग दातामा भूप जग जानी, सरित सकल बहि बर बारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी, सागर निज मरजादा रहहीं, डारहीं रतन तटन ही नर लरहीं, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न दस दीसा अभागा, विधु महीपुर मयूर खनहि, रवि तप जेतन ही काज, मांगे बारद देहि जल रामचंद्र के राज। यह स्वप्न जनता से प्रेम करने वाले कवि का है या नहीं? तुलसी राम के भक्त हैं, लेकिन तुलसी के राम के राज्य में प्रजा सुखी है? जहां तक प्रजा की इच्छा को सर्वोपरि समझने का सवाल है, तुलसी इस विषय में अपने समय से थोड़ा आगे ही है। रामचरितमानस के राम राजा होने के नाते यह जरूर चाहते हैं लोग उनका अनुशासन माने, लेकिन वे यह भी कहते हैं कि यदि मैं कोई अनुचित बात करूं तो वे निर्भय होकर मुझे टोक दें। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई, जौ अन्यति कुछ भाषौ भाई, तौ मोहि बरजहु भय बिसराय। तुलसी को राजा राम का असाधारण अलौकिक रूप नहीं, लोक सामान्य व्यवहार ही प्रिय है। वे प्रजाजन से बातें करते हुए उन्हें भाई कह संबोधित करते हैं। तमाम सेविकाओं के रहते हुए भी सीता घर का काम अपने हाथों करती हैं। यद्यपि गृहम सेवक सेवकानी, विपुल सदा सेवा विधि गुनी, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयसु अनुसरई। राम राज्य में लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार आचरण करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं। यह बात राम राज्य के वर्णन में बार बार आती है, जैसा कि आलोचकों ने लिखा है। तुलसीदास वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। इस विषय में उनकी दृष्टि अपेक्षाकृत संकीर्ण थी। तुलसीदास पर परंपरा का गहरा प्रभाव था। वह प्रभाव तुलसी को वर्ण व्यवस्था और ब्राह्मणों के प्रति अनावश्यक रूप से आस्थावान बना देता था। राम राज्य में अयोध्यावासी उदार परोपकारी ही नहीं है, विप्रों के चरण सेवक भी हैं। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। लोग वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार अपने अपने धर्मों का पालन करते हुए वेद पथ पर चलकर सुख पाते हैं। उन्हें भय शोक और रोग नहीं है। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत, वेद पथ लोग चलहि सदा पा वही सुखही, नहीं भय शोक न रोग। आज हम जानते हैं कि भय शोक और रोग से छुटकारा पाने का उपाय वर्णाश्रम व्यवस्था के भीतर नहीं है। आज वर्णाश्रम व्यवस्था सबको सुखी बनाने का नहीं बल्कि दुखी बनाने का कारण है। काम्य वर्णाश्रम व्यवस्था नहीं, सबका सुख है। तुलसी के राम राज्य की कल्पना का यह अंग आज बहुत पीछे पड़ गया है। आज हमें उसे अस्वीकार करना होगा। लेकिन इस विषय में दो बातें ध्यान देने योग्य हैं। एक तो रामचरितमानस के राजा राम शूद्र तपस्वी शंभु का वध नहीं करते, दूसरे सीता को वनवास नहीं देते। भवभूति ने भी उत्तर रामचरित में शंबुक वध करते समय राम का अंतर्द्वंद व्यक्त किया है। तुलसी ने उस प्रकरण को ही राम कथा से निकाल दिया है। सीता का परित्याग भी रामचरितमानस में वर्णित नहीं किया गया है। इन दोनों प्रसंगों को स्थान न देने के कारण यह प्रतीत होता है कि तुलसी द्वारा कल्पित राम राज्य में शूद्र को तपस्या करने का अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। शूद्र वर्णाधम है, यह तुलसी सिद्धांतः मानते हैं। यहाँ तुलसी की पैरवी नहीं की जानी चाहिए, लेकिन वही शूद्र यदि राम भक्त हो जाए तो आप आपने ते अधिक जेही प्रिय सीता राम देह की पग की पा नहीं तुलसी तनु को चाम। जिसके लिए तुलसी अपनी खाल का जूता बनवाने को तैयार है उसे वे बड़ा मानते हैं या नीच। तुलसी के शूद्र विषयक विचार उनके अंतर विरोध को प्रकट करते हैं। यह अंतर विरोध किसी न किसी मात्रा में उनके द्वारा कल्पित राम राज्य में भी मौजूद है, किंतु इस अंतर विरोध के कारण उनके द्वारा चित्रित समाज की विषमता और उस विषमता से रहित सर्व प्रकार से सुखी और संपन्न राम राज्य के स्वप्न का महत्व आज भी हमारे लिए कम नहीं हो जाता। दैहिक दैविक भौतिक तापों से रहित शस्य संपन्न धरती की जो कल्पना तुलसी ने की थी वह हमारी ही लालसा है। विवेक न्याय संयम आदि सद्गुण हमारे लिए अनावश्यक नहीं हो गए, इसलिए तुलसी का राम राज्य आज भी हमारी अनुभूतियों को उद्बुद्ध करता है। शीर्षक तुलसी की कविताई। हमारे आचार्यों ने साहित्य की विशेषता पर विचार करते हुए दिखाया है कि उसमें शब्द और अर्थ दोनों की स्थिति समान महत्वपूर्ण होती है, वे परस्पर स्पर्धी होते हैं। इसी परस्पर स्पर्धिता से चारुता उत्पन्न होती है। जो अर्थ है उसे शब्दों में बांध देना साहित्य है। अर्थ से तात्पर्य दृश्यमान जीवन जगत और चित्त पर होने वाली उसकी प्रतिक्रिया से उद्भूत अनुभूति संपदा से भी है। प्रत्यक्ष जीवन में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों की प्रतिक्रिया हमारी चेतना में होती है वे शब्दबद्ध होकर विभाव बन जाती है। भावानुभूति के लिए विभाव अनिवार्य है। कवि के लिए चुनौती यह है कि वह जीवन और जगत से जैसा प्रभावित हुआ है वैसा ही ज्यों का त्यों शब्दों में ऐसा बांध दे कि पढ़ने सुनने वाला भी उसी की तरह प्रभावित हो जाए। यह असंभव है। यह जितना असंभव है कवि की जिद और साधना भी उतनी ही अथक है। खून पसीने से लथपथ होते हुए भी कवि की यह लालसा तुष्ट नहीं होती दिखती कि जीवन और जगत ने उसकी चेतना को जो संपदा भेंट की है वह उसी टटकेपन और जीवंतता की सारी थरथराहटों और छायाओं के सहित समाज को सौंप सके। लालसा का यह असंतोष अपनी कवित्व शक्ति की अक्षमता की यह कचोट महान कवि की अनिवार्यता है। या वो लफ्ज जो शर्मिंदे मानी न हुआ, लफ्ज शब्द की मानी अर्थ से शर्मिंदा न होने की स्थिति की पीड़ा गालिब जैसे महान कवि को ही नसीब होती है। तुलसीदास के पाठक जानते हैं कि उनके यहाँ कवि कर्म की अक्षमता की घोषणा इतनी अधिक और इतनी बार मिलती है कि कवि के असंस्कृत पाठक ऊब जाते हैं। सच्चा पाठक नहीं ऊबता क्योंकि वह सिर्फ अक्षमता की घोषणा ही नहीं देखता, वह शब्दों में न बंध पाने वाली उस अर्थ संपदा को भी देखता है जो इस अक्षमता का कारण है। और पाठक श्रोता ने इसी देख लिया तो कवि कर्म सफल। शब्दों में न बांध पाने की असमर्थता की घोषणा सार्थक हो गई। तुलसीदास कवि कर्म की अक्षमता की घोषणा मार्मिक स्थलों पर अवश्य करते हैं। वे भाषा और वर्ण, शब्द और अर्थ का मिलान करते चलते रहने वाले अत्यंत सतर्क कवि हैं। वे जितने ही भावना प्रवण हैं उतने ही विवेकवान, इसलिए उनके यहाँ शब्द और अर्थ का द्वंद्व सर्वत्र विद्यमान है। मार्मिक प्रसंगों में कवि कर्म की अक्षमता की घोषणा इसी का परिणाम है। यह एक और बात का प्रमाण है, तुलसी का भाव जगत उनके काव्य में प्रकट भाव जगत से अधिक महत्व और सुंदर है। सब कुछ प्रकट नहीं होता, तुलसी कम से कम अपनी तरफ से अपने वर्ण को, अपने काव्य से अपने अर्थ को, अपने शब्द से महत्तर मानते हैं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोर निरत संसारा, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बनिक मन गुन गन जैसे। रघुपति के चरित का स्मरण ही तुलसी को भाव विभोर बना देने के लिए काफी है, इसलिए रघुपति के अपार चरित का नाम लेते ही उन्हें अपनी बुद्धि की असमर्थता का बोध हुआ। रघुपति का अपार चरित उनका काव्य और वर्ण है। राम और लक्ष्मण के सौंदर्य से अधिक अभिभूत कार्य वर्ण विषय क्या हो सकता है तुलसीदास के लिए। सांवले और गोरे राजकुमार का सौंदर्य वर्णित कर पाने की असमर्थता को प्रकट करती हुई सखी कवियों की कठिनाई को अत्यंत समर्थ ढंग से कह जाती है। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी, देखती है आंखें और कहना है जुबान को, आंखों को जुबान नहीं है। आंखों में और जुबान में फासला भी है, अतः जो कुछ आंखों ने देखा है उसे ज्यों का त्यों बयान कर पाना वाणी के लिए असंभव है। तुलसी की यह अर्धाली कविता की अक्षमता के एहसास को सक्षम तौर पर व्यक्त करती है। इसके आशय को पंडित कृष्ण शंकर शुक्ल ने एक स्थान पर बहुत अच्छी तरह व्याख्यायित किया है, भाव कवि बड़ बढ़िया नहीं होता। जिस कवि के पास कथ्य होता है वह दूर की कौड़ी नहीं लाता। जिन कवियों के पास अनुभूति पोषिता मार्मिकता है वे दूर न जाकर अपने पास ही वस्तु कुछ सूक्ष्मता तथा सहृदयता से देखते हैं। ऐसे कवि बड़े संयम से बहुत कुछ कहने के प्रलोभन को रोक लेते हैं। संयम से कहना पड़ा क्योंकि साधारण कवियों से ऐसे अवसरों पर रुका ही नहीं जाता। भाव की अनिवार्यता जैसे उन्हें मूक कर देती हो। जिन कवियों के पास वाणी है उनके नेत्र नहीं है, जिनके नेत्र हैं उनके वाणी नहीं रहती, जो बड़बड़ाते हैं उनके हृदय के नेत्र नहीं हैं, जिन्होंने भावों की मार्मिक अनुभूति प्राप्त की है वे बड़बड़ाते नहीं हैं। गिरा अनयन नयन बिनु बानी, नयन कथ्य है, वाणी कविता है, कथ्य अर्थ है, वाणी शब्द है। कवि के अपने कथ्य भाव या अर्थ का सौंदर्य उसको मूक कैसे कर देता है, उसको कवि कर्म अक्षमता का एहसास करा कैसे देता है, इसकी आंतरिक प्रक्रिया देखनी हो तो सूर तुलसीदास की ये पंक्तियां देखिए। भरत प्रीति नित विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई, जासु बिलो की भगति लवलेसु, प्रेम मगन मुनिगन मिथिलेसु, महिमतासु कहै कि मितुलसी, भगति सुभाय सुमति हिय तुलसी हुलसी, भगति सुभाय सुमति हिय हुलसी। आप छोटी महिमा बड़ी जानी, कभी कुल कानी मानी सकुचानी, कहि न सकत गुण रुचि अधिकाई, मत गति बाल बचन की नाई। भरत बिमल जसु बिमल विधु सुमति चकोर कुमारी, उदित बिमल जन हृदय नब एक टक रही निहारी। भरत की प्रीति नम्रता विनय बड़ाई सुनने में सुखद है, लेकिन उसका वर्णन कर पाना कठिन है। जिसकी भक्ति का लव क्लेश ही देखकर मुनिगण और मिथिलेश प्रेम मग्न हो गए, उनकी महिमा तुलसी कैसे कहे। उनकी भरत की भक्ति और उनका स्वभाव तुलसी के हृदय में हुलस रहे हैं। सुमति अपने को छोटी और महिमा को बड़ी जानकर और कवि कुल की मर्यादा को मन में लाकर संकुचित हो गई। भरत के गुणों में सुमति की रुचि बहुत अधिक है और वह कह सकती नहीं। सुमति की गति बाल बचन की सी हो गई। भरत का विमल यश निर्मल चंद्रमा है, सुमति चकोर बालिका है। चंद्रमा भक्त के हृदय आकाश में उदित है, सुमति की चकोर बालिका उसे एकटक निहार रही है। भरत की भक्ति और उनका स्वभाव कवि का कथ्य है। वह सुमति कवि के हृदय में हुलस रहा है। बुद्धि का हृदय भाव और बोध दोनों एकत्र, बुद्धि और हृदय का तनाव। सुमति जितना ही अधिक आकृष्ट है भरत के गुणों पर, उतना ही अधिक वह संकुचित होती है। संकुचित होने और अपनी सीमा पहचानने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह सतर्क होती है। बालक कहना बहुत कुछ चाहता है, ठीक से कह नहीं पाता। बालक को अपनी सीमाओं का ख्याल शायद नहीं रहता, सुमति को है। लेकिन इस संकोच और सतर्कता के बाद जो कुछ वह बोल पाती है, वह बाल वचन जितना ही मात्रा में कम और व्यंजना में अधिक प्रभावशाली और हृदयग्राही होता है। मात्रा में कम, प्रभाव में अधिक। लेकिन बोलने के पहले वह भरत के गुणों से पूरी तरह अभिभूत होती है। कथ्य कवि से छिटक कर अलग हो जाता है। कथ्य कवि के हृदय में ही है, लेकिन वह आकाश का चंद्रमा भी बन गया है। कथ्य कवि के हृदय में ही है, लेकिन वह आकाश का चंद्रमा बन गया है। बुद्ध चकोरी के समान उसे एकटक निहार रही है। वह कथ्य चंद्रमा अब कवि की सुमति चकोरी की नहीं, सभी का है। विशेष निर्विशेष हो सकता है। यहां भावबोध, इच्छा क्रिया, रुचि संयम, वर्ण विषय अभिव्यक्ति और अर्थ तथा शब्द, इन सब का द्वंद्व विद्यमान है। इसी द्वंद्व को कुछ लोग तनाव कहना पसंद करते हैं। इस जटिल प्रक्रिया से प्रकट होता है महान काव्य का सौंदर्य। कवि कुल की मर्यादा को ध्यान रखकर सुमति यदि अपने हृदय के हुलास को संयमित करती है, तो अंत में उससे कवि कुल की मर्यादा को गौरव मिलता है। तुलसीदास का कथ्य और भाव जगत उनके लिए प्रायः प्रत्यक्ष हो उठता है। वे शब्दों द्वारा जो चित्रित करते हैं, वह चित्र उनके लिए कभी कभी इतना सजीव और वास्तविक हो उठता है कि वह उनकी दृष्टि में भी उससे अलग होकर देश और काल की सीमाओं को लांघकर वास्तविकता में बदल जाता है। कल्पना कवि के लिए प्रत्यक्ष हो जाती है। वे इस प्रत्यक्षीकृत जगत में फिर से प्रवेश करते हैं। कल्पना से निर्मित जगत के सुख दुख का अनुभव वास्तविक जगत के सुख दुख की भांति करते हैं। उनके यहाँ वास्तविकता ही कल्पना में नहीं बदलती, कल्पना भी वास्तविकता में बदलती रहती है। ऐसा वर्ण विषय में तन्मयता के कारण होता है। कविता अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर टूट जाती है। वह वास्तविक बनकर टूट जाती है। तुलसी फिर टूटी हुई कविता को वास्तविक के आधार पर जोड़ते हैं। कवि के चरम उत्कर्ष उसके टूटने और फिर उसकी पुनर्निर्मिति की यह क्रिया तुलसी के यहाँ बराबर चलते रहती है।